परमात्मा की और संतों महापुरुषों की अहेतु की कृपा से हम लोग पंचदशी ग्रंथ में विचार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से पूर्व प्रकरणों का अनुशीलन किया। भगवान व्यास जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं आवृत्तिर असकृत उपदेशात, बार बार उसकी आवृत्ति पुनरावर्तन करना चाहिए, इससे पूर्व विचारित अर्थ का परिपक्व होता है। नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव, सच्चित आनंद शब्द से लक्षित निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म एक ही तत्व है, वही सत्य है, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। और वही सत्य ब्रह्म जीव का स्वरूप है। कैसा जीव तत्व का स्वरूप ब्रह्म, शोधित जीव तत्व, शोधन करने पर जो अवशिष्ट स्वरूप रहता है उसको कहते हैं शोधित जीव तत्व। तो शोधित जीव तत्व सच्चित आनंद शब्द लक्षित ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए श्रुति कहती अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन मेरा स्वरूप ब्रह्म है ऐसी अनुभूति नहीं हो पा रही है, इसलिए स्वामी विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी ग्रंथ का प्रथम भाग विवेक पंचक कल बताया लो। तो विवेक के बिना शोधन नहीं होता है, और जब तक शोधन नहीं होगा तब तक ब्रह्म और ब्रह्मास्मि तो कहता जाएगा लेकिन ब्रह्म का बोध नहीं होता है। कल विचार किया संबित शब्द से यहां पर चेतन को कहा जाता है। प्रथम प्रकरण का नाम था तत्व विवेक प्रकरण, वही तत्व को संबित शब्द से कहा गया जिसको श्रुति विज्ञानम शब्द से कहती है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो संबित विज्ञान पदार्थ में नित्यत्व सिद्ध किया, संविद विज्ञान नित्य है। और वेदांत में जिसको नित्य बोलते हैं उसको सत्य कहा जाता है, इसलिए पर्यावाचक शब्द है, ध्यान में रखिए, नित्य कहो सत्य कहो एक ही चीज है। तो इसलिए एक स्वरूप घट गया सच्चित आनंद में प्रथम स्वरूप है सत्य, इसलिए सत्यत्व आ गया। उसके बाद चित, चित भी आ गया और वही ब्रह्म है जिसको यहां पर संबित कहा, जिसको श्रुति सत्य बोलती है वही है ब्रह्म। इसलिए विज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, और वही संबित सत्य शब्द से लक्षित स्वरूप ब्रह्म आत्मा है जिसको श्रुति बोलते अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, तो कल आप लोगों को बतला दिया कि धीरे धीरे दो चार दिन में हमारी शैली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसी बात को अयम आत्मा ब्रह्म, इसी वाक्य को यहां पर स्वामी विद्यारण्य मुनि ने बताया अष्टम श्लोक में, तत्व विवेक प्रकरण के अष्टम श्लोक में बताया, इयम आत्मा परानंदः, ये प्रसिद्ध श्लोक है। इयम कहने से ये जो संबित है ब्रह्म वो आत्मा है, इसलिए आत्मा में दो स्वरूप घटित हुआ, एक सत्य स्वरूप, उसके बाद चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और वही ब्रह्म से अभिन्न आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए परानंद कहा, परानंद। क्यों परानंद हो गया? परम प्रेमास्पदम यतः, कि निरतिशय प्रेम आत्मा में होता है, बाकी साधनों में प्रेम तो होता है लेकिन सातिशय प्रेम होता है, अनित्य प्रेम होता है, नित्य प्रेम तो आत्मा में ही होता है। तो तीन स्वरूप घटित हो गए, सत, चित और आनंद, लेकिन ऐसी अनुभूति तो नहीं हो पा रही है। तो कल भी आप लोगों को बतलाया, सच्चे साधक का बल बुद्धि नहीं होती है, अपनी बुद्धि नहीं होती, अपना तर्क नहीं होता है, बल क्या होता है? श्रुति बल, श्रुति बल, श्रुति कह रही है इसलिए है, अपने को अनुभव आता हो अथवा ना आता हो। श्रुति कह रही है कि सर्व कामो जजेत, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग का साधन जागादि है। ठीक इसी प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म, अपना स्वरूप ब्रह्म है ऐसा मान लेना चाहिए। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रकरण, उसमें स्वामी विद्यारण्य मुनि महाराज ने युक्ति के द्वारा सिद्ध किया कि सच्चित आनंद शब्द से लक्षित ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा का स्वरूप है। तो युक्ति से सिद्ध जो हुआ अद्वैत ब्रह्म, उसमें प्रमाण है श्रुति महावाक्य, इसलिए पंचम प्रकरण का नाम हो गया क्या? पंचम प्रकरण का नाम क्या है? महावाक्य है ना, विवेक प्रकरण। इसलिए अपना स्वरूप ब्रह्म है, इसमें श्रुति प्रमाण को दिखला दिया चार महावाक्यों का निरूपण करके। लेकिन श्रुति भी है, महापुरुष लोग कह रहे भी है, जीव ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन अनुभव तो हमको ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? इसलिए विचार करो कि जगत सत्य है कि मिथ्या है, विचार करके देख लो। इसलिए द्वितीय भाग को क्या बोलेंगे, प्रथम भाग का नाम हो गया विवेक पंचक, है ना। तो और पंचदशी ग्रंथ के द्वितीय भाग का नाम क्या है, दीप पंचक, दीप पंचक, है ना। तो दीप पंचक में प्रथम प्रकरण क्या है, चित्रदीप, द्वितीय भाग का प्रथम प्रकरण कहा मैंने, इसलिए षष्ठ प्रकरण होगा, चित्रदीप हो गया। ये चित्र है, चित्र है, जो भी दिखाई दे रहा है ये सब चित्र है, पर्दे के बिना चित्र नहीं होता है, है ना। पर्दे के बिना चित्र नहीं होगा। और ये भी बात समझ लो, अब पर्दा यदि हिल जाए तब भी चित्र नहीं दिखे देगा। दो बातें आ गई, इसलिए दृष्टांत के माध्यम से यहां पर बतलाया कि एक अधिष्ठान होता है, बाकी सब चित्र होते हैं। वस्त्र का अधिष्ठान दिया, धौत वस्त्र, घटित वस्त्र, लांछित वस्त्र और रंजित वस्त्र हो गया। कल आप लोगों को बतलाया जो कपड़े को साफ कर दिया वो हो गया धौत वस्त्र, उसके बाद मान लगा दिया उसको कहेंगे घटित वस्त्र, और पेंसिल से बना दिया चित्र उसको कहेंगे लांछित वस्त्र बोलेंगे, फिर उसके बाद रंग भर दिया रंजित वस्त्र। तो वहां पर अधिष्ठान कौन है, सत्य कौन है, धौत वस्त्र सबसे पहले जो है, समझ में ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर धौत वस्त्र कौन है भैया, कूटस्थ ब्रह्म, कूटस्थ ब्रह्म, और उसमें सब भास्र है ना। ये आपका मान लगा हुआ वस्त्र कौन हो गया, ईश्वर समझ लो, ईश्वर समझ लो, है ना। और जो है पेंसिल लगा दिया हिरण्यगर्भ समझ लो, विराट आत्मा समझ लो। और ये जीव जो है ना, ये रंग भरा हुआ ये चित्र हो गया, है ना। और इससे होने वाली सृष्टि ये भी चित्र है। तो किसके द्वारा सृष्टि हो गई, तो माया और अविद्या के द्वारा। इसलिए यहां पर ये जगत मिथ्या है क्योंकि माया से सृष्टि है, समझ में ना। इसलिए यद यद मायिकम तत्तत् मिथ्या, जो माया से होगा वो मिथ्या होता है। जथा इंद्रजालादिकम, दृष्टांत समझ लो, जादूकर जैसे अपनी इंद्रजाल से माया शक्ति से दिखा देता है, इसलिए सत्य नहीं होता है मिथ्या होता है। दृष्टांत है, रज्जु सर्प ले लो, अज्ञान से जो दिखता है वो तो मिथ्या होगा। इसी बात को भी स्वामी विद्वान ने बताया, एक ईश्वर की सृष्टि होती है और एक जीव की सृष्टि होती है। तो ईश्वर भी चित्र है, जीव भी चित्र है। तो ईश्वर चित्रकार बन गया किसको लेकर के, माया को लेकर, माया का स्वरूप भी बतला दिया पीछे कि शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति ये माया है, और मलिन सत्य प्रधान प्रकृति अविद्या जो जीव की उपाधि है। तो माया को लेकर के ईश्वर चित्रकार बन गया, और अविद्या को लेकर जीव भी चित्रकार बन गया। तो माया और अविद्या को लेकर के सृष्टि है चित्र, इसलिए सत्य नहीं हो सकता है, मिथ्या होगा। जब तक मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा तब तक वेदांत का विचार नहीं कर सकते, अनुभव में नहीं ला सकते। इसलिए षष्ठ प्रकरण का नाम हो गया चित्रदीप। फिर ऐसे कुटस्थ ब्रह्म जहां पर चित्र भाषा है जिस पर दे में, उसी को जो आत्मा के रूप से जानना चाहिए, मैं के रूप से जानना चाहिए, है ना। और उसका फल क्या होगा तो बता दे यहां पर तृप्ति दीप, ज्ञान का फल तृप्ति, निरतिशय तृप्ति, निरंकुश तृप्ति का ना यहां पर तृप्ति शब्द से बोल रहे हैं, निरंकुश तृप्ति। एक बार तृप्त होने पर और कोई अभिलाषा नहीं होती है, तृप्ति का विषय नहीं रहता है, इसका नाम निरंकुश तृप्ति। तो माइक पदार्थ से कभी निरंकुश तृप्ति नहीं होती है, स्वप्न पदार्थ से कभी निरंकुश तृप्ति नहीं होती है। तो निरंकुश तृप्ति है ज्ञान का फल। और कैसा ज्ञान? अहम अस्मि ब्रह्म, इसलिए प्रथम श्लोक में बता दिया आत्मानं चित विजानीय, तृप्ति दीप प्रकरण का प्रथम श्लोक। और कैसा? अयम अस्मेति पुरुषः, पुरुष का अर्थ ब्रह्म हुआ, वो ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसका फल बता दिया किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे, शरीर के साथ जब तादात्म्य नहीं होगा तो शरीरगत धर्म भी अपने में आरोप नहीं करेगा, नहीं करेगा। और कितना भी बड़े विद्वान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, शरीर के साथ यदि अहमता हुई तो शरीर का धर्म तो आएगा ही आएगा, आप चाहो या ना चाहो, आएगा कि नहीं। जैसे आप किसी जहां पर कचड़े फेंकते होंगे लोग, वहां पर बैठे हुए तो कचड़ा फेंकेंगे कि नहीं? अब बोलेंगे क्यों फेंकते हो भाई, बैठो मत यहां पर। इसी प्रकार शरीर हो गया कचड़ा, तो शरीर में तादात्म्य करेंगे तो शरीर का जो कचड़ा है, राग द्वेष जितने भी है, ये तो आएगा ही आएगा। और शरीर के साथ संबंध नहीं हुआ तो नहीं आएगा, शरीर का धर्म नहीं आएगा। इसलिए किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरे, शरीर के साथ तादात्म्य होने पर ही शरीर का धर्म आता है। तो ज्ञान को ये बतला दिया अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और उसका फल है निरंकुश तृप्ति, कृतकृत्यता, जो करना था, जो प्राप्त होना था हो गया। तो ये है तृप्ति दीप प्रकरण। तो आगे चलेगा विचार में अष्टम प्रकरण। तो हम तो आराम से ले रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अष्टमम कुटस्थ दीप प्रकरणम, आठवां प्रकरण का नाम हो गया कुटस्थ दीप प्रकरण। जो कुटस्थ होता है वही दीप होता है ना, जो सत होता है वही चित होता है, भिन्न नहीं होता है। सर्प को जो सत्ता दे रहा है, सर्प को वही प्रकाशित करता है। तो विचार कर लो, सर्प को कौन सत्ता दे रहा है? तो रज्जु का चित है। अभी आपको बता दिया, देखो जो सत होता है ना, जो सत्ता देता है वही प्रकाशित करता है। तो विचार करना चाहिए कि सत्ता सर्प को कौन दे रहा है? रज्जु नहीं देती है, रज्जु स्वयं ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आपको बतलाया कि ब्रह्म ही सत्य है, इससे अतिरिक्त सब क्या होंगे? मिथ्या हो जाएंगे। आपको देख, आपको लगता है कि रस्सी सत्ता देती है, रस्सी वास्तविक सत्ता नहीं देती है। अपना संबंध रस्सी के साथ बनता है, इसलिए पहले रस्सी में सत्ता आई। फरमाया इसलिए रज्जु अवच्छिन्न जो चेतन है ना, वही सत्ता देता है, रस्सी सत्ता नहीं देती है। ये ध्यान में रखिएगा, रज्जु का ज्ञान मतलब अपनी सत्ता, जैसे इदम बोल रहे हैं ना, इदम यह सर्प है, तो है जो है ना वो है किसका है, रस्सी का है कि आपका है, आपका है भाई। इसलिए वेदांत सुनते हो तो थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, उसका अनुभव करते जाओ, है ना। जैसे पहले भी बताया था कि देखो कोई पर्दा चल रहा है, चलचित्र का पर्दा चल रहा है ना, वहां पर एक वृक्ष है, वृक्ष कहां पर वृक्ष है, पर्दे में वृक्ष है। अब वृक्ष में बढ़िया बढ़िया फल है, बढ़िया बढ़िया पुष्प है, तो फल पुष्प को आधार वृक्ष दे रहा है कि पर्दा दे रहा है, लेकिन लगता तो है कि वृक्ष दे रहा है, पड़मा है कि नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपको लगता है कि रस्सी सत्ता देती है, इसलिए लगता है कि सर्प का बाल होने पर भी रस्सी रहती है, इसलिए आपको लगता है कि रस्सी सत्ता देती है, रस्सी नहीं देती है सत्ता, अपनी सत्ता से रस्सी सत्तावान है, अपने प्रकाश से रस्सी प्रकाशित है, तो अपनी सत्ता से सत्तावान होकर के रस्सी सत्ता देती है, वास्तविक स्वतंत्र रूप से रस्सी सत्ता नहीं दे सकती है, हो गया ना। इसलिए जो कुटस्थ सत है वही सबका प्रकाश है, वही सबका प्रकाश है। इसलिए यहां इसलिए नाम हो गया, देखो कुटस्थ दीप प्रकरण, जो कुटस्थ है वही सबका प्रकाशक है, उसका प्रतिपादन यहां पर किया जा रहा है, ध्यान में रखिए। तो पहले आप लोगों को बतला दिया कल ही, ये गुरु और चेले का ग्रंथ है, तो चेले का नाम हो गया स्वामी विद्यारण्य मुनि, और गुरु का नाम हो गया स्वामी भारती तीर्थ। तो चेले ने जो है छह प्रकरण तक लिखा, छह प्रकरण था, आगे सप्तम जो प्रकरण हुआ तृप्ति द्वीप, यहां से गुरु जी ने किया, ऐसा रामकृष्ण टीकाकार कहते हैं, जो आप लोगों की चल रही है टीका। रामकृष्ण टीकाकार जो है स्वामी विद्यारण्य मुनि के शिष्य है, और वो सन्यासी थे कि गृहस्थ थे कि ब्रह्मचारी थे, ऐसा कुछ परिचय नहीं मिलता है, कुछ भी हो सकता, नाम से नहीं कह सकते। और कहां के थे निवासी ये भी ज्ञात नहीं होता है, लेकिन विद्वान थे और अपने गुरु के उत्तम शिष्य थे, ये उनके मंगलाचरण से पता लगता है। देखो मंगलाचरण करते हैं रामकृष्ण टीकाकार, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो कुर्वे कूटस्थ दीपस्य व्याख्यां तात्पर्य दीपिका। नमस्कारात्मक मंगल है, मम गलयति नाशयति इति मंगलम, मम का अर्थ दुख प्रतिबंध, उसको जो नष्ट कर देता है उसका नाम क्या है, मंगल। समझ में ना, एक अर्थ है बता दिया मंगल का अर्थ, मम दुखम गलयति नाशयति मंगलम, ये मंगल हो गया। दूसरा है कि भी अर्थ होता है मंगम, मंगम, पहले मम बोला था, अभी मंगम, समझ में ना। लाती, लाता है जो, मंग मतलब सुख, हाँ जो सुख लाता है ना, उसका नाम हो गया मंगल। दो अर्थ हो गया। तो ये नमस्कारात्मक मंगल, नमस्कारात्मक, तो नमस्कार करते हैं भाई, किसको देख लो, नाता मतलब नमस्कार करके, नमस्कार मतलब नमस्कार के, हाथ जोड़ने का नाम नमस्कार नहीं होता है, ध्यान में रहेगी, केवल केवल हाथ जोड़ने का नाम नमस्कार नहीं होता है। ये तो एक क्रिया है प्रदर्शन के लिए, अपने जो भाव है साधक का, जो भाव होता है हृदय में, इसको प्रकट करने के लिए एक व्यापार किया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, दंडवत किया जाता है। तो कैसा भाव है, आप गुरुदेव श्रेष्ठ है, हम तो निकृष्ट है, आप तो ज्ञानी है, हम तो अज्ञानी है। ये जो नैसर्गिक भावना होती है साधक के हृदय में, है ना, इसको बोध कराने के लिए, सूचित कराने के लिए जो दंडवत वगैरह करते हैं, इसका नाम होता है नमस्कार। तो ये समझ लो कि अपनी जो सीमित अहमता है, अपना जो अभिमान है, अभिमान कई प्रकार का हो सकता है, किसी को जाति का हो जाता है, किसी को धन का हो जाता है, किसी को विद्या का हो जाता है, किसी को गुरु का हो जाता है, हमारे गुरु ऐसे हैं, बड़े हैं, पूर्वजों का हो जाता है। तो जितने भी अभिमान है ना, सबको त्याग करने का नाम है नमस्कार, ये समझ लो। तो नमस्कार करके किसको बता दें, देखो, श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो, विद्यारण्य मुनि हो गए उनके गुरु टीका करके, और उसके गुरु हो गए भारती तीर्थ, समझ में ना। और वो जो भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि, वो दोनों कैसे है, पहला बोल दिया श्री, श्री है ना, श्री कृष्ण बोलते कि नहीं, श्री कृष्ण, तो श्रीया युक्त कृष्ण श्री कृष्ण, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब ऐश्वर्य, तो उसको कहते हैं श्री कृष्ण। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर लगाओ, यहां पर द्वंद्व समास हो गया, पहले भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनि, भारती तीर्थश्च विद्यारण्य मुनि, भारती तीर्थश्च विद्यारण्य मुनिच, ये हो गया। और श्री के साथ फिर कर लो, है ना, तो श्रीया युक्तौ भारती तीर्थ मुनि, ऐसा है, जो श्री से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है। तो यहां पर कौन सा ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है क्या, धन संपत्ति नहीं, यहां पर ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं होता है, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या यहां पर श्री है, ऐसे श्री से युक्त है भारती तीर्थ महाराज विद्यारण्य मुनि महाराज, है ना। और वो कैसे हैं दोनों, बोल दे ईश्वर, जैसे श्री का अन्वय दोनों के साथ हुआ, इसी बार ईश्वर के साथ भी दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा, है ना। तो श्री भारती तीर्थ ईश्वर है और श्री विद्यारण्य मुनि ईश्वर है, ऐसा अर्थ है यहां पर। क्यों, जो ईश्वर है समस्त शक्ति से संपन्न, वही अनुग्रह शक्ति को लेकर के गुरु हो जाते हैं, अनुग्रह शक्ति, साधक के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अनुग्रह शक्ति को लेकर जो प्रकट हो जाते हैं, इसका नाम हो गया गुरु। गुरु के अलग तत्व नहीं है, अनुग्रह शक्ति विशिष्ट जो ईश्वर है वही गुरु है। ये तो शरीर धारण करते ही तो केवल एक जो है प्रतीक मात्र है मान लेते, इसलिए गुरु को शरीरधारी नहीं समझा जाता है, एक माध्यम है, शरीर जो दिखता है माध्यम है। इसलिए स्वतः सतर उपनिषद बोलती है यस्य देवे परावक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हरता प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे परमात्मा में जैसी भक्ति होती है उसी प्रकार भक्ति अपने गुरु में होनी चाहिए, तब जाकर के ब्रह्म विद्या अभिव्यक्त होती है साधक के चित्त में। इसीलिए यहां पर रामकृष्ण टीकाकार दोनों के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, उसका स्वरूप तो ईश्वर ही है। ऐसे दोनों को नमस्कार करके तो क्या करने जा रहे हैं, कहते हैं कुटस्थ दीपस्य, ये प्रकरण का नाम कुटस्थ दीप अष्टम प्रकरण, इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या कैसी है, तात्पर्य दीपिकाम व्याख्या। रामकृष्ण टीका के ऊपर कह रहे हैं, रामकृष्ण टीकाकार जो टीका लिखने वाले हैं वो टीका जो व्याख्या है वो कैसी है, तात्पर्य दीपिकाम है ना। तो कूटस्थ दीप प्रकरण जो किसने लिखा, हाँ भारती तीर्थन लिखा, चेले ने तो सब लिख चुका है पहले, तो स्वामी भारती तीर्थ महाराज जो अष्टम प्रकरण लिखे हैं उनका तात्पर्य क्या है। तात्पर्य मतलब वक्तुर इच्छा तात्पर्यम, इसको कहते हैं तात्पर्य, वक्तुर इच्छा, वक्ता कहना क्या चाहते हैं इसको कहते हैं तात्पर्य है ना। जैसे भोजन का समय चल रहा है, राजा बोल दिया कि सैंधव आनय, सैंधव अजय एकादशी है ना, तो सैंधव आनय बोल दिया, हमने बोल दिया मान लो हाँ, तो यहाँ पर घोड़ा तो नहीं है तो सैंधम का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधम का अर्थ नमक भी होता है जो व्रत में चलता है, तो किसको लाओगे, क्यों लाएंगे भी, आपको क्यों ऐसा ज्ञान हो गया, हाँ कि वक्तुर इच्छा, वक्ता कहना क्या चाहते हैं, तो प्रसंग के अनुसार तात्पर्य ज्ञान होता है, प्रसंग क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या समय है, तो वक्तुर इच्छा तात्पर्य। तो वक्ता यहां पर स्वामी भारती तीर्थ महाराज, तो ऐसे वक्ता का तात्पर्य क्या है, है ना, उसको प्रकट करने वाली जो टीका है व्याख्या है उस टीका को बोल दिया तात्पर्य दीपिकाम, तात्पर्य से दीपिकाम मतलब प्रतिपादिकाम, प्रतिपादन करने वाली टीका को यहां पर बोल दिया तात्पर्य दीपिकाम, इसलिए तात्पर्य दीपिका नामक टीका रामकृष्ण टीका को हम कुर्वे मतलब लिखने जा रहे हैं। तो अब भूमिका बना रहे हैं, देखो रामकृष्ण टीकाकार अत्र मुमुक्षोर मोक्ष साधनस्य ब्रह्मात्मकत्व ज्ञानस्य त्वं पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्। बहुत ध्यान देने की पंक्ति है ये, इसको समझ लिया तो सब समझ में आ जाएगा आगे, यही पंक्ति को समझ लिया तो। इस ग्रंथ में अत्र मुमुक्ष और मोक्ष साधनस्य, ये देखो मुमुक्षु के लिए क्या चाहिए भी है ना, मुमुक्षु के लिए क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, समझ में ना। जिसको भूख लगती हो है ना तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना, और 1,00,000 रुपया दिया तो क्या करोगे, वहां पर केदारनाथ गए हो मान लो, सब कुछ प्रलय हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आप कोई पैसा दे रहा है तो पैसा क्या करोगे? तो वहां तो भोजन चाहिए ना, तो भूभुक्षुक के लिए भोजन चाहिए। अच्छा भोजन भी क्यों चाहिए? भोजन का तात्पर्य क्या है? कि मेरे पास भोजन है ऐसा दिखलाने के लिए क्या? हाँ, भोग की निवृत्ति के लिए, समझ में है ना। इसलिए भोग की निवृत्ति यही मुख्य प्रयोजन, समझ में कि नहीं। और अवांतर प्रयोजन भोजन सामग्री, इसलिए सबसे पहले इच्छा होती है, साध्य में इच्छा होती है, उसके बाद साधन में इच्छा होती है, है ना। इसलिए भोग की निवृत्ति है मुख्य प्रयोजन, केवल सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, हो गया ना। इसलिए मुमुक्षु की इच्छा जो है मोक्ष में पहले है, फिर मोक्ष किससे होगा बाद में इच्छा होती है, है ना। इसलिए समझ लो, तो मुमुक्षु के लिए मोक्ष चाहिए, और मोक्ष होता है साधन से। इसलिए यहां पर लिखते हैं मुमुक्षुर मोक्ष साधनस्य, मुमुक्षु को तो भी मोक्ष का साधन चाहिए। और साधन जो है बहुत सारे हैं संसार में, साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस साधन से मोक्ष होगा? तो बोल दें और कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, अनेक साधन नहीं है। तो देखो, तो मोक्ष साधन से का विशेषण लगा रहे हैं, ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञानस्य मोक्ष साधनस्य। ब्रह्मात्मा कहा, ब्रह्म ही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, है ना। लेकिन विशिष्ट आत्मा नहीं कह रहे यहां, निर्विशेष आत्मा, जो ही महाकाश है वही घटाकाश बन जाता है। घर को घड़े को फोड़ दिया तो एकत्व है दोनों में। तो आत्मा का स्वरूप तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, है ना। ऐसा एकत्व ज्ञान होना चाहिए, दोनों में एकत्व। एकत्व मतलब संख्या नहीं समझना यहां पर, एकत्व और एक के तो एक ही और शब्द हो गया, मतलब अद्वैत। एकत्व का अर्थ क्या है? अद्वैत, अद्वैत। इसलिए दोनों का स्वरूप एक है ऐसा ज्ञान होना चाहिए, इसको बोलते अहम ब्रह्मास्मि, इसी का नाम हो गया अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, ये हो गया महावाक्य का अर्थ। सभी महावाक्यों का अर्थ ब्रह्मात्मा एकत्व, है ना, जीव ब्रह्म का एकत्व, ये महावाक्य का अर्थ, वाक्यार्थ बोलते हैं, वाक्यार्थ। तो वाक्यार्थ का ज्ञान होगा पदार्थ का ज्ञान होने पर, पदार्थ का ज्ञान यदि ना हो वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा, समझ में ना। हाँ, इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम, आप लोग जानते हैं, सैंधवम आनय कह दिया भाई, सैंधम का अर्थ क्या होना चाहिए यहां पर, आनय शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, गंगायाम घोषा कह दिया, तो गंगा का अर्थ क्या है, घोषा का अर्थ क्या है। कोई विदेशी को बोलोगे जिसको हिंदी का ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान नहीं, सुनता रहेगा, वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं होगा, है शब्द को तो सुन रहा है, शब्द ज्ञान तो हो रहा है, शब्द सुन रहा है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है उसको पदार्थ बोलेंगे। शब्द हो गया पद, उसके द्वारा जो अर्थ की उपस्थिति हो गई बुद्धि में उसको कहेंगे पदार्थ। वो पदार्थ का ज्ञान यदि ना हो तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है, समझ में ना। इसलिए यहां पर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया महावाक्य, है ना। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा यदि भान न हो तो महावाक्य का तात्पर्यात्मक अर्थ का ज्ञान नहीं होता है ना। ठीक इसी प्रकार तत्त्वमसि में कह रहे, शब्द तो समझ में आ जाता है भाई, अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, शब्द का ज्ञान तो हो गया है ना, लेकिन अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहां पर बोलते हैं देखो, त्वम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्, तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि में अहम हो गया है ना, अहम अर्थ, ये अहम तो बोलते हो लेकिन अहम शब्द से किसको समझ रहे हो, कि शरीर को समझ रहे हो, कि मन बुद्धि को समझ रहे हो, कि शरीर विशिष्ट चेतन को समझ रहे हो, कि किसको समझ रहे हो, है ना। इसका जब तक निरूपण नहीं होगा तो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, है ना। इसलिए विचार करना चाहिए, सबसे पहले किसका विचार करना चाहिए, अहम का अर्थ क्या है, इसका निरूपण तुम कर लो। इसलिए किसी महापुरुष से पूछा गया भाई, आप ऐसा एक उपाय बताओ कि जिसको अपलाने पर झट से ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान। तो महापुरुष ने कहा कि नहीं, शिष्य ने पूछा कि क्या करें, हम बहुत ध्यान करेंगे तब भी होगा का ज्ञान, महापुरुष ने कहा इससे भी नहीं होगा, तो एक जप मंत्र बताओ, जप करेंगे, कोई उपासना करेंगे, ना जप से होगा ना उपासना से होगा, फिर किससे होगा, जो जो समझ रहे हो साधन सबको तुम छोड़ो, सब छोड़ दो, फिर क्या करना है, तुम कौन हो इसका पहले पता लगाओ। अहम शब्द का अर्थ क्या है, अपना स्वरूप क्या है, इसका पहले अनुसंधान करो, इसी को यहां पर बोल रहे शोधन, है ना। इसने पिछले बता दिया कि जीव का स्वरूप क्या है, कितने अंश को लेकर के जीव होता है, ये पहले बताया, चैतन्यम यत अधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः, चित्छाया लिंग देहस्ता तसंगो जीव उच्चते। तो कितने अंश हुए भैया, कितने अंश हुए, तीन अंश हो गए, तीन अंश हो गए, है ना। जैसे मान लो घटाकाश बोल दिया, है ना, अथवा घड़े में जल है, जल में प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है ना, तो किसको लेकर के होगा, अथवा जल में प्रतिबिंब दिख रहा है ऐसा समझ लो, तो जल है और जल में प्रतिबिंब, और जल को भी जो आधार दे रहा है ना, जैसे अभी बताया देखो, कोई मान लीजिए चलचित्र में मनुष्य दिख रहा है, चलचित्र में मनुष्य, एक चोर दिख रहा है, एक सिपाही दिख रही है, तो चोर किसका नाम होगा, चलचित्र में जो चोर दिख रहा है वो चोर किसका नाम होगा, तीनों का नाम है ना, तीनों का नाम हो जाएगा, एक तो मूल हो गया पर्दा, हो गया कि नहीं, फिर उसके बाद एक चित्र हो गया हाथ पैर वाला, हो गया कि नहीं, और उसमें दूसरे से जो भिन्न है आकार, हाथ में चाकू पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है, हो गया कि नहीं, और तीनों को लेकर हुआ कि नहीं हुआ, और वही जो है किससे, सिपाही से भिन्न हो जाएगा, हो गया ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर समझ लो, तो जीव किसका नाम हो गया, एक अंतकरण हो गया अथवा अविद्या समझ लो, तो अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ रहा है, हो गया कि नहीं, किसका पड़ रहा है, कूटस्थ का पड़ रहा है, हो गया ना, तो कूटस्थ हो गया पर्दा, वो सबको अधिष्ठान दे रहा है, और उसमें कल्पित हो गया अंतकरण ना ना, पहले अंतकरण होगा, अंतकरण के बिना जीव नहीं होगा। तो अंतकरण अप्रतिम हो गया तो उसको चिदाभास बोलेंगे। और दोनों को जो सत्ता दे रहा है, किस किस को? अंतकरण को भी दे रहा है, अंतकरण प्रतिम चिदाभास को भी दे रहा है, हो गया ना। हाँ, इसलिए कूटस्थ ब्रह्म को छोड़ करके ना अंतकरण रहेगा, ना अंतकरण में चिदाभास रहेगा। पकड़ में आया कि नहीं? इसलिए हमको समझना चाहिए कि अपना स्वरूप क्या है, अंतकरण है कि अंतकरण में चिदाभास है कि कूटस्थ है। तो यदि इसका निराकरण करके कूटस्थ तक पहुंच गए तो हो गया शोधित अमर्थ, वो हो गया तम पदार्थ शोधित। इसी को यहां पर बोलते हैं, देखो तम पदार्थ का जब तक शोधन नहीं होगा, अहम का अर्थ क्या है ऐसा जब तक आप शोधन नहीं करेंगे, कूटस्थ तक तो नहीं पहुंचेंगे, तो एकत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। महावाक्य के तात्पर्यात्मक अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए इसी बात को बतला दिया, देखो तम पदार्थ शोधन पूर्वकत्वात्, तम पदार्थ का शोधन करेंगे तब जाकर के ब्रह्मात्मा एकत्व का ज्ञान होगा। इसलिए शोधन कैसे करेंगे आगे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।